I am very grateful for this rare opportunity to be with all of you at Kumbh Mela in Nasik.
मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि मुझे ये दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है यहां नासिक धाम में कुंभ मेले के इस पावन अवसर पर आने का.
Special gratitude to each and every one of you for making the efforts to be here at this time.
विशेष मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगा यहां पर उपस्थित जितने भक्त हैं उनके प्रति जिन्होंने प्रयास करकर आज यहां पर वो उपस्थित हैं.
Special gratitude to His Grace Pankajangri Prabhu blessing the occasion.
और मेरी विशेष कृतज्ञता पंकजांगरी प्रभु की ओर जो कि मायापुर धाम से यहां पर आए हैं.
Special honors to His Holiness Lokanath Swami Maharaj.
और विशेष विशेष आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी महाराज
का. Who has given a beautiful description of the histories according to Srimad Bhagavatam and our great acharyas of the meaning of Kumbh Mela.
जिन्होंने इतनी सुंदर तरीके से इतिहास बताया कुंभ मेला का श्रीमद् भागवत के आधार पर.
It is said in Brahma Sutra, Anandamayo Bhyasat.
Brahma Sutra में बताया गया है Anandamayo Bhyasat.
That the absolute truth is the source of all pleasure.
परम सत्य जो है वो सभी आनंद के स्रोत हैं.
And every living being who is part and parcel of that absolute truth is seeking pleasure.
और सभी जो जीव हैं जो कि इस परम सत्य के अंश हैं वो इस आनंद की खोज में है.
Whatever species of life one may be in whatever planet in the universe, everyone is seeking happiness.
चाहे किसी भी योनि में जीव हो चाहे किसी भी ब्रह्मांड में हो हम सब आनंद की खोज कर रहे हैं.
According to how we have made choices in the past and the influences of the three modes of material nature that we have bound ourselves to, we have different conceptions of what is happiness.
और जिस प्रकार से तीन गुणों के अधीन और हमारी स्वेच्छा का उपयोग करते हुए हम इस संसार में आनंद की अलग अलग परिभाषाएं दे चुके हैं.
But everyone is looking for nectar or pleasure.
और सभी जो हैं वो आनंद या अमृत की खोज में हैं.
Some see money as nectar.
कोई हम देखते हैं कि वो धन में वो आनंद या अमृत ढूंढते हैं.
For others it's fame or the pleasures of sex or music. Or power.
और कई जो हैं वो संगीत में इंद्रिय भोग में यश में वो गौरव में इसमें वो अमृत ढूंढ रहे हैं.
Or even the prestige one may get from renunciation.
या कोई वैराग्य के कारण यशस्वी होता है उसमें भी वो अमृत ढूंढ रहा है.
Everyone is looking for the nectar of happiness according to their state of consciousness.
और अपने अपने चेतना के अनुसार हर एक जीव इस अमृतमय आनंद को आनंद की खोज में है.
His Holiness Lokanath Maharaj described from the pages of Srimad Bhagavatam the story of the suras and the asuras, the worst of enemies, two classes of living beings who have very opposite ways of looking at life.
और जैसे कि परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने कहा श्रीमद् भागवत के अनुसार कि सुर और असुर जो कि हर समय एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी होते हैं वो एक साथ आए.
One are servants of God and the others are
enemies of God.
और एक जो हैं वो भगवान के सेवक हैं और दूसरे जो हैं वो भगवान के प्रतिद्वंद्वी हैं.
Both sides extremely powerful.
और दोनों शक्तिशाली अपने अपने तरीके से.
And always competing over who has control over the universe.
और दोनों जो गुट हैं वो इस संसार में नियंत्रण के लिए हर समय स्पर्धा में लगे रहते हैं.
When the asuras gain tremendous power by pleasing their guru and their brahmins, Shukracharya, they were able to defeat the devas because Indra had committed an aparad to Brihaspati, their guru and a great brahmin.
और असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य की सेवा कर कर और इस तरफ इंद्र ने अपने गुरु का अपराध करने के वजह से वो परास्त हुए असुरों के हाथों.
The devas were homeless and left with nothing.
और जो देवता थे उनको घर निकाला दिया गया.
And with all of their powers and all of their yogic siddhis and all of their influence, they were helpless.
और जितनी उनकी सिद्धियां थी जितना उनका पराक्रम था ये सब के होने के बावजूद वो असहाय स्थिति में आ गए.
Queen Kunti in her prayers to Krishna, she explained that the greatest disqualification for getting Krishna's grace is attachment. An arrogance that comes from the attachments to wealth, beauty, high education, and prestige.
कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो अड़चने आती हैं वो हैं जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री.
Krishna is a kinchana gocharam. He's the property of those who really in their hearts believe that nothing is mine.
और भगवान श्री कृष्ण उनको कहा गया है अकिंचन गोचर, तो वो जो कि अपने आप को निष्किंचन मानते हैं भगवान श्री कृष्ण उनके प्रति आकृष्ट होते हैं.
The devas, each one is individual in a particular state of consciousness, but they wanted to enjoy, they wanted to serve, but everything was taken away. So they cried out to the Supreme Personality of Godhead.
और देवता हालांकि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं परंतु इस प्रसंग में उनका जब सब कुछ छिन जाता है तो वो भगवान श्री कृष्ण से याचना करते हैं.
Now Lord Vishnu, he could have taken everything from the asuras and gave it to the demigods.
तो भगवान विष्णु वो स्वयं ही असुरों से सब कुछ लेकर देवता को पुनः उनकी संपत्ति दे सकते थे.
But instead he gave them a plan.
परंतु इसके अलावा भगवान विष्णु ने उन्हें एक योजना दी.
He gave them some tapasya to perform.
तपस्या करने के लिए कहा.
He said, "Now you should not fight the demons. Make an alliance with them because you all want to enjoy nectar." And neither one of you have the power to get it yourselves, but together you can get.
और उन्होंने देवताओं से कहा कि तुम इनसे लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, परंतु तुम समझौता करके अमृत को प्राप्त अवश्य कर पाओगे.
You see, Krishna can give us things, but he gives us instructions and austerities because through that process we not only get the thing but our hearts we have the opportunity to be transformed and surrender.
तो भगवान श्री कृष्ण जो हमें चीजें चाहिए वो दे तो सकते हैं परंतु भगवान उसके साथ हमें एक योजना देते हैं, हमें एक प्रक्रिया देते हैं जिसके द्वारा हम उन चीजों को भी प्राप्त कर सकें और हम अपना सर्वस्व भगवान को न्योछावर कर सकें.
So it was told by the demons, by the demigods, if we together churn the ocean of milk
nectar will arise.
और योजना ये बताई कि यदि देव और असुर वो एक साथ आकर समुद्र का मंथन करें तो वहां से अमृत की प्राप्ति हो सकती है.
That nectar will give us the power to enjoy. It will give us such incredible strength and health and long, long life.
और ये अमृत प्राप्त करने के पश्चात उन्हें दीर्घ आयु और उनकी इंद्रियां सशक्त हो जाएंगी और सभी प्रकार की समृद्धि उन्हें प्राप्त हो सकती है.
Everyone wanted it. So for a higher principle, they were willing to put aside their differences and serve together by churning the ocean of milk.
और इस ऊंचे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक दूसरे में जो मन मुटाव था उसे बगल में रखते हुए वो एक साथ आए.
Unfortunately, that higher principle for many of them was to fulfill a higher selfish desire.
हालांकि ये ऊंचा उद्देश्य केवल उनके किसी स्वार्थ की पूर्ति हेतु ही था.
And as His Holiness Lokanath Swami Maharaj explained, through the churning, so many wonderful leelas of the Lord took place.
और जैसे परम पूज्य लोकनाथ महाराज ने कहा कि इस समुद्र मंथन लीला से कितने सारे हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं.
Kurma, the great avatar of Lord Vishnu, appeared to be the support for the churning of the ocean of milk.
और हम देखते हैं कि भगवान कूर्म के रूप में प्रकट हुए और वो आधारशिला बने इस समुद्र मंथन के.
Ajita appeared incarnated to hold the mountain from the top.
और अजीत ये भी भगवान का एक अवतार जो कि इस पर्वत के शिखर पर विराजित थे.
शंकर लॉर्ड शिवा मैनिफेस्टेड द हाईएस्ट एक्सप्रेशन ऑफ सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड थ्रू हिज मेकिंग पर्सनल सैक्रिफाइस टू शो कंपैशन टू दोज हु वर सफरिंग.
और भगवान शिव जी वो उन्होंने भगवत सेवा की पराकाष्ठा दिखाते हुए अपने आप का एक बलिदान दिया और उस जहर को ग्रहण किया.
And everyone was getting so many of their desires fulfilled. Airavata, a great, was given to Indra. A beautiful horse was given to Bali. Lakshmi appeared.
और इस प्रकार से अनेक देवताओं की इच्छाओं की पूर्ति हो रही थी. ऐरावत जो कि इंद्रदेव इनको प्राप्त हुआ, जो अश्व वहां से पैदा हुआ वो बलि महाराज को प्राप्त हुआ, लक्ष्मी देवी प्रकट हुई.
But Lord Vishnu told him, don't be distracted by any of those things. Liquor was given to the demigods, Surabhi was given to the Brahmins for their yajnas, but you have to keep churning. If you want the nectar.
और भगवान विष्णु ने उन्हें आदेश दिया कि ये सारी जो वस्तुएं प्रकट हो रही हैं इनसे प्रलोभित न होना और एकजुट होकर अपने कार्य में लगे रहो.
So many difficulties, so many challenges, setbacks, and at each time they all had to helplessly call out to Vishnu to help.
और इस समुद्र मंथन के दौरान बहुत सी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा और अपनी हर असहाय स्थिति में वो भगवान विष्णु की ओर दौड़ते, याचना करते हुए.
एंड फाइनली लॉर्ड नारायण हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ धन्वंतरी इमर्ज्ड फ्रॉम द ओशन ऑफ मिल्क होल्डिंग द पॉट द कुंभा ऑफ नेक्टर.
और अंततः भगवान नारायण स्वयं धन्वंतरी के रूप में कुंभ में वो इस अमृत को धारण कर प्रकट हुए.
As long as they could exploit each other, they were united. But as soon as the nectar came, the demon stole it.
तो जब तक वो स्वार्थ हेतु लगे हुए थे तब तक उनके अंदर एकता दिख रही थी, परंतु जैसे ही धन्वंतरी के हाथ में उन्होंने अमृत देखा तो जो असुर थे वो छीन लिए उसे.
The demigods had nothing after all that work.
और देवताओं ने देखा कि इतना अथक प्रयास करने के बाद उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ.
But the Asuras, they were fighting among each other over who would have the honor of drinking it first.
और जो असुर थे उन्हीं के अंदर वो मरने और काटने लगे एक दूसरे को कि वो अमृत कौन लेगा.
They were so arrogant and so envious that no Asura would allow any other Asura to drink it. So no one could drink it. As soon as somebody had it and said, I am the most learned among all of us, someone would rip it away. I am the most powerful. Someone would, I'm the most wealthy. I am the most beautiful. And they wouldn't. They all wanted it for themselves.
और असुरों में जिनके अंदर इतना अहंकार और ईर्ष्या है वो आपस में इस प्रकार से लड़ने लगे और कहने लगे कि अमृत मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैं सुंदर हूं, मैं ज्यादा शक्तिशाली हूं.
And the asura, the devas, they just surrendered again to Lord Vishnu. Save us. And the Lord appeared as Mohini Murti.
और इस वक्त फिर से देवता जो भगवान विष्णु के सामने गए और उनसे सहायता मांगने के लिए और तब भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किए.
Her beautiful form was more nectar than the nectar.
और मोहिनी मूर्ति का जो रूप था वो धन्वंतरी के कुंभ के अमृत से भी ज्यादा सुमधुर प्रतीत हो रहा था.
And even the demons, they were so attracted.
और यहां तक कि असुर वो भी आकर्षित हो रहे थे मोहिनी मूर्ति से.
And she glanced upon each and every one of them.
और वो अपना दृष्टिपात दे रही थी हर एक वहां पर उपस्थित देव और असुर पर.
And by the potency of her attractive glance, each asura was thinking, she loves me.
और हर एक असुर जब देखा कि मेरे ऊपर मोहिनी मूर्ति दृष्टिपात कर रही है तो उसे लग रहा था कि मोहिनी मूर्ति मुझसे आकर्षित है.
She loves only me.
और हर एक असुर ये सोच रहा था कि मोहिनी मूर्ति केवल मुझसे प्रेम करती है.
She deeply appreciates who I truly am more than anyone else.
और मोहिनी मूर्ति बहुत ही प्रामाणिक तरीके से वो पहचान गई है कि मुझमें कितने गुण हैं. हर एक असुर ये सोच रहा था.
And each one had such total faith that she fell in love with them.
और हर एक असुर इस विश्वास में था कि मोहिनी मूर्ति केवल मेरे लिए ही प्रकट हुई है.
That they all agreed, let us just give the pot to this beautiful lady.
और वो सब एकजुट होकर इस मत के बने कि ये जो अमृत का कलश है ये मोहिनी मूर्ति को दे दिया जाए.
And let her decide who to give it to.
और मोहिनी मूर्ति को ये निर्णय लेने दो कि ये अमृत किसे देना चाहिए.
But everyone knew for sure she'll give it to me.
और सभी इसी विश्वास में बैठे हुए थे कि मोहिनी मूर्ति ये सारा अमृत का कलश मुझे दे देगी.
And Mohini, when they made this proposal, she said, you don't even know who I am or who my parents are or what I've done in the past or where I'm coming from. Why are you putting so much trust in me?
और मोहिनी मूर्ति ने कहा कि ये जो प्रस्ताव तुम रख रहे हो तुम जानते भी नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे माता पिता कौन है और मेरे ऊपर इतना विश्वास रख रहे हो तुम लोग सब.
This is not very intelligent. But they were so infatuated by her glance that they started laughing and saying, oh, you are so funny, but we have complete faith in you.
और ये असुर हालांकि ये बहुत बुद्धिमान थे परंतु मोहिनी मूर्ति के रूप से इतने आकर्षित हो चुके थे कि वो मोहिनी मूर्ति के इस वाणी को वो विनोद के रूप में ले रहे थे.
So Lokanath Maharaj described in such beautiful devotional detail.
Lokanath Maharaj, इन्होंने इतने सुंदर तरीके से, भक्तिमय तरीके से इसका वर्णन किया.
How she took the pot of nectar and then went over to the demigod's side.
कि वो इस अमृत के कलश को लेकर वो देवताओं की ओर गई.
And started pouring it in their mouths.
और देवताओं के मुख में अमृत डालने लगी.
She's just a beautiful young lady.
एक सुंदर स्त्री थी वो.
And the asuras are the most powerful warriors with weapons and mystical powers. But they just let her do it.
और मोहिनी मूर्ति की तुलना में ये असुर जो कि इतने शक्तिशाली थे ये अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ देख रहे थे
Because they didn't want to displease her.
क्योंकि वो अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे मोहिनी मूर्ति को
And after she gave the nectar away in that way, then she became Lord Vishnu and disappeared.
और जब मोहिनी मूर्ति ने सारा अमृत देवताओं को दे दिया फिर उन्होंने विष्णु का रूप लेकर वो अदृश्य हो गए
And then there was another fight.
और एक और फिर संग्राम हुआ
And Maharaj described that so nicely.
लोकनाथ महाराज बहुत सुंदर तरीके से इसका वर्णन कर रहे थे
So when people come to the Kumbh Mela, we come to get nectar.
तो जब कुंभ मेले में कोई आता है तो वो अमृत की इच्छा से आता है
Krishna tells in Gita, ye yathamam prapadyante thams tathaiva bhajamya. That as people approach me, I will reciprocate accordingly.
भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो जीव मेरे साथ जिस प्रकार से आदान प्रदान करता है मैं भी उसी प्रकार से करता हूं
Some people, when they come for this nectar, Their conception of nectar is long life or health or liberation or mystic powers. But devotees pray for pure devotional service.
तो हम देखते हैं कि बहुत यहाँ कुंभ मेले में आते हैं इस अमृत को इसलिए प्राप्त करने के लिए ताकि उन्हें दीर्घ आयु स्वास्थ्य या मुक्ति प्राप्त हो परंतु हम आते हैं यहाँ पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने
न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भावतात भक्ति रोहित की द्वाई दिस इज लॉर्ड चैतन्यस टीचिंग ऑफ व्हाट इज ट्रू नेक्टर
चैतन्य महाप्रभु ने सही अमृत की परिभाषा दी है अपनी शिक्षाओं में
आई डू नॉट वॉन्ट एनी अमाउंट ऑफ वेल्थ
मुझे किसी भी प्रकार की धन की इच्छा नहीं है
Not even elevation to heavenly planets.
स्वर्गवास की भी इच्छा नहीं है।
I do not want the pleasures of the opposite sex, even the most beautiful and most highest physical material experience.
और इस संसार में जो सर्वोच्च इंद्रिय सुख है, वो भी मुझे नहीं चाहिए, वो कहते हैं।
I do not want fame or prestige or great scholarship.
वो कहते हैं कि मुझे नाम प्रतिष्ठा ये सब भी नहीं चाहिए
I do not even want liberation from suffering.
मुझे इस संसार के जो दुख हैं उनसे मुक्ति भी नहीं चाहिए
My Lord, if you desire me for to take birth again and again and again, then let me do it in such a way that I only wish to serve you, to please you unconditionally.
यदि भगवान आप मुझे जन्मांतर जन से जन देना चाहते हैं परंतु मुझे आप केवल आपका सेवक बनाकर रखिए
प्रेम अमृत द ट्रू नेक्टर इज लव फॉर कृष्ण
प्रेमामृत इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति
सुखदेव गोस्वामी डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ द चर्निंग ऑफ ओशन ऑफ मिल्क इन द eighth canto of Srimad Bhagavatam.
Shukadeva Goswami Samudra Manthan ki leela ye 8th skand mein bata rahe hain.
But then he describes another type of churning of milk in the 10th canto.
Aur dasham skand mein wo ek aur Samudra Manthan ki leela batate hain.
Yashoda Mai a gopi Krishna's mother She rose early in the morning on the day of Diwali to churn dahi, milk, into butter.
और वो है दिवाली के दिन जब यशोदा मई मंथन कर रही थी दही का कि वो भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन निकाल सके.
As she was churning the milk, She was singing beautiful songs of Krishna.
और जब वो मंथन कर रही थी दही का तो भगवान श्री कृष्ण के गुणगान गीत के रूप में कर रही
She was absorbed in remembering Krishna with such motherly love.
और मातृ प्रेम में वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण भी कर रही थी
but she was churning that milk for Krishna's pleasure.
और उस दही का मंथन वो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रही थी.
We read in the churning of the ocean of milk how much labor and trouble and struggle the demigods and the demons were enduring and churning to get nectar.
तो समुद्र मंथन की लीला में हमने सुना कि कैसे देव और असुर वो इतने अथक प्रयास कर रहे थे इस अमृत को प्राप्त करने के लिए.
Yashoda Mai was perspiring. She was working very hard to churn this milk, but for Krishna's pleasure.
और यहाँ यशोदा माई वो भी जब मंथन कर रही थी तो पसीना पसीना हो रही थी, परंतु वो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रसन्नता के लिए था.
She didn't want nectar for herself.
वो अमृत अपने स्वयं के लिए नहीं चाह रही थी.
She wanted to give nectar to Krishna.
वो भगवान श्री कृष्ण को ये अमृत देना चाहती थी.
She wasn't churning to get nectar.
वो स्वयं वो अमृत को अपने लिए नहीं चाहती थी.
She was putting the nectar of her love into that milk.
और वो अपने हृदय में जो कृष्ण प्रेम का अमृत है वो उस दही में डाल रही थी.
The nectar of her love, her devotion, she was putting in the milk.
उनके भक्ति का अमृत वो उस दही में डाल रही थी.
And Krishna, who's the source of Dhanvantari.
और भगवान श्री कृष्ण जो कि धन्वंतरी के स्रोत हैं,
who gave the nectar, who came out of the ocean of milk.
जो धन्वंतरी उस समुद्र मंथन से आए और उस अमृत का कुंभ लेकर,
he was so hungry to taste this nectar that Mother Yashoda was putting in milk.
वो धन्वंतरी के स्रोत इतने भूखे हुए माता यशोदा के इस अमृत को चखने के लिए,
that he became makhan chor.
कि वो माखन चोर बन गए.
He became a butter thief.
माखन चोर हुए वो.
Can you imagine Dhanvantari became a butter thief?
क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि धन्वंतरी माखन चोर बने?
Kurma, whose shell was 800,000 miles in width, became a butter thief.
कि कूर्म जो कि उनकी पीठ 800,000 मील से भी लंबी थी वो माखन चोर बने.
Narasingadev, Varahadev, Parasuram, Ramchandra. Those powerful great personalities, they took the form of their original form, makhan chor.
तो नरसिंहदेव, वराहदेव, परशुराम ऐसे बड़े बड़े महान भगवान के अवतार, वो सब माखन चोर बने.
You see, when Dhanvantari brought this nectar for the devas, it meant nothing to him.
जब धन्वंतरी ये अमृत वो लेकर आए इन देवताओं के लिए तो उनके लिए इसमें कुछ नहीं था.
Give it. It's not going to make them happy anyway.
वो केवल वो उन्हें देकर छुटकारा पाना चाहते थे.
Demigods and demons were fighting over it, and they were fighting among each other for it. Dhanvantari just gave it. And Mohini Murti, she came to kind of mediate the situation, but she didn't take any for herself. She had no desire for it. She just gave it. Take it.
और देव और असुर जो कि इतनी स्पर्धा में थे, लड़ रहे थे उस अमृत के लिए, मोहिनी मूर्ति वो भी जब आई तो उनको उससे कोई सरोकार नहीं था, वो तो केवल सुलह करने आई थी.
But the milk Yashoda Mai was churning, the supreme personality of Godhead was yearning and longing to taste it, so much so he was willing to steal it.
और यहां हम देखते हैं कि माता यशोदा जो मंथन कर रही थी इस अमृत का, साक्षात भगवान श्री कृष्ण उस अमृत को प्राप्त करने के लिए इस हद तक गए कि उन्होंने चोरी की.
So the churning of Mother Yashoda, a simple little gopi living in Gokul, is millions of times more valuable nectar than what all the demigods and the demons of the heavenly worlds were churning.
और यहां हम देखते हैं कि माता यशोदा जो कि एक साधारण सी गोपी की भूमिका निभा रही थी, उन्होंने जो अमृत निकाला वो लाखों गुना ज्यादा मूल्यवान था भगवान श्री कृष्ण के लिए।
प्रेम पुमार्थ महान चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन द ग्रेटेस्ट क्रेस्ट जूल ऑफ ऑल ट्रेजर्स इज द पुरुषार्थ शिरोमणि अनकंडीशनल अनमोटिवेटेड लव फॉर कृष्ण।
और यहां हम ये देख रहे हैं कि जो पुरुषार्थ शिरोमणि है वो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसे अहितुकी प्रेम को जागृत करना।
यशोदा माई इज टर्निंग एंड कृष्ण इज लॉन्गिंग टू टेस्ट इट।
यशोदा माई इसका मंथन कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण इसकी याचना करते हैं।
एंड आफ्टर स्टीलिंग इट एंड टेस्टिंग द नेक्टर ही वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू हिज लिटिल फ्रेंड्स एंड टू द मंकीज।
और स्वयं इसका आस्वादन करने के पश्चात वो अपने मित्रों में और वृंदावन के बंदरों में बांटना चाह रहे थे।
See, the demigods, demons, they didn't want to share it. They wanted it for themselves. But Krishna's tasting and sharing.
और हम समुद्र मंथन की लीला में देखते हैं कि देव असुर वो बांटना नहीं चाहते थे, वो स्वयं ग्रहण करना चाहते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण वो बांट रहे थे।
एंड श्रीमती राधारानी and other younger gopis, they would also churn, through their love, they would churn Krishna's heart and create such nectar.
और श्रीमती राधारानी और अन्य गोपियां वो भी इस प्रकार का मंथन करती थी और भगवान श्री कृष्ण के हृदय से इस प्रकार का प्रेम वो उजागर करते थे।
And when they were feeling separation from Krishna, their hearts were churning and churning and churning in remembrance of Krishna. And Krishna was tasting that nectar.
और जब भी वो भगवान के विरह में होते, तो उनका हृदय भी मंथन के द्वारा इस प्रकार का अमृत प्रकट करता जो भगवान श्री कृष्ण चखना चाहते थे।
Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself in the mood of Sri Radha, who has come to this world. Namo Mahabharanyaya Krishna Prem Pradayate. Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaura Dvishe Namo. He's come to distribute that nectar, the true nectar of Prem.
और वही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधारानी का भाव लेकर इस अमृत को बांटने के लिए प्रकट हुए।
एंड बाय नाम अमृता महाराज लोकनाथ महाराज वाज डिस्क्राइबिंग दिस नाम अमृता द नेक्टर ऑफ द होली नेम अवेकन्स दैट प्रेम फ्रॉम आवर हार्ट्स।
और हमारे हृदय में भी इसी प्रकार का अमृत हम पैदा कर सकते हैं नामामृत के द्वारा।
Brihad Bhagavatamrita. The Srimad Bhagavatam awakens that nectar of prem from our hearts.
Srimad Bhagavat jo hai, unme bhi itni shakti hai hamare andar is prakar ka amrit ujagar karne ki.
And Srila Prabhupada, 50 years ago, from this month, he crossed over the oceans. Several oceans, several continents to distribute this nectar.
और श्रील प्रभुपाद 50 साल पहले कई समुद्रों को पार कर कर इसी अमृत को बांटने के लिए गए।
50 years ago today, Srila Prabhupad was on the Jaladuta crossing the Atlantic Ocean.
50 साल पहले आज ही के दिन श्रील प्रभुपाद जलदूत में थे, इसी अमृत का वितरण करने निकले।
And when he came to America, he explained to us, he didn't come to take something, he came to give.
और जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो वो अमरीकियों से कुछ लेने नहीं बल्कि उनको देने के लिए गए थे।
He had three things.
तीन चीजें उनके पास थी।
He had no money, he didn't know anyone. He didn't have much physical strength. He was very old. He just had heart attacks.
और उनके पास कोई पैसा नहीं, कोई संपर्क नहीं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, और उनको हृदय का दौरा पड़ा था 3 बार.
But he had that nectar Mother Yashoda was putting when she was churning the milk.
परंतु श्रील प्रभुपाद के पास वही अमृत उनके हृदय में था जो माता यशोदा मत्थे समय उस दही में डाल रही
थी। He had the nectar that Lord Chaitanya in the mood of Sri Radha was giving to the world.
श्रील प्रभुपाद के हृदय में वही अमृत था जो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बांटने के लिए प्रकट हुए।
He had the Srimad Bhagavatam.
उनके पास श्रीमद् भागवत था।
The nectar of Sukadev Goswami's contribution to the world.
Sukadev Goswami ke kathamrit ka Srimad Bhagavat.
He had the faith in the absolute nectar of the holy names.
Aur unka drid vishwas jo harinamamrit hai usme.
And he had complete faith in the nectar of seva to his guru maharaj.
और उनको दृढ़ विश्वास था उनके गुरु की सेवा में।
This is where true nectar is. In hearing Srimad Bhagavatam, in chanting the holy names, and in serving the Vaishnavas.
और यही सही मायने में अमृत प्राप्त करना है कि भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन का गुणगान करना, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना और उनकी सेवा करना।
And what was the service? To be an instrument of compassion for the fallen souls.
और ये सेवा क्या है जो कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए एक सूत्रधार बने।
To spread the holy names, the Srimad Bhagavatam and Vaishnav culture to others is true nectar.
और सही अमृत यही है कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए ये जो हरिनामामृत है इसका हम वितरण करें।
So we come to Kumbh Mela. Not just seeking some material nectar for some temporary material happiness. We come for that true nectar that is revealed in Srimad Bhagavatam by the great Acharyas and Srila Prabhupada to taste that, to pray for that, and to help Srila Prabhupada and our Acharyas distribute that nectar.
तो हम कुंभ मेले में आते हैं कोई हमारी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए नहीं अपितु श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्य जिन्होंने हमें यह अमृत दिया है इसका आस्वादन कर दूसरों को बांटने हेतु
Especially through the chanting of the holy names.
और विशेष रूप से हरिनाम संकीर्तन कर
Lord Chaitanya described Param Vijayate Sri Krishna Sankirtanam. This kirtan is the prime benediction for all humanity.
और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम कि ये जो हरिनाम संकीर्तन है ये एकमेव वरदान है पूरे मनुष्य समाज के लिए.
Because through sincere chanting in a humble state of mind, as the servant of the servant of the servant of the Lord's devotees, we will be given the nectar, the only true nectar that the soul longs for, the nectar that even Krishna longs for, Krishna Prem.
और यदि हम दासों के भाव में विनम्र भाव में हरिनाम संकीर्तन करेंगे तो ये जो सही अमृत है वो हमारे हृदय में हम प्राप्त कर पाएंगे जो भगवान श्री कृष्ण भी जिसकी लालसा करते हैं
थैंक यू वेरी मच
बहुत बहुत धन्यवाद